हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 356 मनस्वी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही अनय ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। क्योंकि जब सभी ने उनके रिश्ते को रिश्ता था कहकर पुकारा तो उसे बहुत बुरा लगा। अनय ने एकदम दर्द भरी आवाज में कहा, श्श, बस करो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ इतना आसान है ना। रिश्ते तोड़ना, रिश्ते जोड़ना सब दो दो मिनट का खेल है। जब तुम्हारा मन किया तब बोले कि हमारी शादी रिश्ते को जान देना चाहती हो और अब बोल रही हो हमारे बीच रिश्ता था। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? उसकी आवाज में छिपे दर्द को मनस्वी महसूस कर रही थी, लेकिन आदित्य के सामने कुछ देर पहले उसने जो कहा था वो भूल नहीं पाई थी, इसलिए उसे वो सब याद दिलाते हुए मनस्वी ने कहा, और तुम बोल सकते हो जो कुछ भी तुम्हारे मन में आए। अपने दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट भी कर सकते हो। और तुमने भी तो बोला था हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तब तुमने ये सोचा था कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। लेकिन नहीं, तुम क्यों सोचोगे मेरे बारे में? तुम तो कभी नहीं चाहते कि हमारे बीच। गुस्से के साथ साथ मनस्वी की आंखों में आंसू भी थे। अपनी गिल्ट में ही उसने ये सब कहा। अनय ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा था। बस तुमने जो किया उसके बारे में ही तुमसे सवाल कर रहा था। तुम पहले अपने आप से पूछो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं बताती हो तुम मुझे? क्यों नहीं करती हो मुझ पर विश्वास? क्यों मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले नहीं आता? क्यों तुम मुझे हमेशा सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहती हो? क्यों अपने साथ खड़े होने देना नहीं चाहती? अनय के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवाते हुए वो बोली, बस करो अनय, अब बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम। ये बात बोलते हुए मनस्वी लगभग पूरी तरह से रोने लगी थी। इसके आगे उससे कुछ नहीं बोला गया। उसका हाथ अनय के चेहरे पर से हट गया था और वो उसके सामने ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में जान नहीं बची और वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रोते हुए वो कब नीचे गिरने लगी उसे खुद ही पता नहीं चला। वो पूरी तरह से ज़मीन पर घुटने के बल बैठ पाती इससे पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसके गिरते हुए शरीर को पकड़ लिया। इस तरह से रोते हुए उसे अनय ने नहीं देखा और उसने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। अनय भले ही इस वक्त मनस्वी से बहुत नाराज था और अपनी नाराज़गी निकालने के लिए उसने मनस्वी को कई कटी बातें बोली थीं, लेकिन फिर भी वो उसे इस तरह रोते हुए नहीं देख पा रहा था। कहीं ना कहीं वो भी उसे प्यार करने लगा था। शायद उसे ही इस बात का एहसास नहीं था या फिर वो मानना नहीं चाहता था, लेकिन मनस्वी उसकी लाइफ में कुछ जगह बना ही चुकी थी। अनय ने उसे अपने गले से लगा रखा था और लगातार उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था ताकि वो शांत हो जाए, लेकिन मनस्वी का रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। उसका सिर अनय की छाती पर था और वो लगातार रो रही थी। उसके आंसुओं से अनय की शर्ट भी भीग चुकी थी। अनय ने एकदम धीमी आवाज में सिर्फ उससे सवाल किया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक हूं कि मेरे लिए कोई इतना आंसू बहाए। मनस्वी उसी तरह सुबकते हुए बोली, हाँ तो किसने कहा है कि तुम्हारे लिए रो रही हूं? चुप करो तुम बेवकूफ कहीं के, अनय थोड़ा सा उदास होते हुए बोला। हाँ सही कहा, बेवकूफ ही हूं मैं, क्योंकि जो मेरे लिए रो रहा है उसी को अपना कंधा दे रहा हूं सिर रखकर रोने के लिए, और चुप कराने की कोशिश भी कर रहा हूं। उसकी ये बात सुनकर मनस्वी ने भी जवाब में कुछ नहीं बोला, बस हल्के से उसकी छाती पर मारा और आंखें बंद करते हुए अपनी बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द कस ली। उसी तरह उसके सीने पर सिर रखकर खड़ी रही। उसका रोना अब पहले से काफी कम हो गया था। कुछ देर बाद वो दोनों वापस होटल के उसी सीक्रेट रूम में चले गए, लेकिन इस बार वो दोनों वहां पर अकेले थे। कोई भी बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ नहीं था, लेकिन बाहर जरूर सारे लोग सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे। आदित्य जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा उसने वहां नैना, विवान, स्वीटी और अरुण को देखा, लेकिन सभी लोगों से उसे सिर्फ सुनैना की ही फिक्र थी, इसलिए वहां पहुंचते ही आदित्य ने नैना की तरफ देखते हुए पूछा, तुम सब यहां बाहर क्या कर रहे हो? तुमने तो फोन पर कहा था कि सुनैना को होश आ गया है, तो फिर उसके साथ कोई भी क्यों नहीं है? आदित्य लगभग भागते हुए आया था तो वो थोड़ा सा हाँफ रहा था और उसकी सांसें भी बराबर नहीं थी, इसलिए उसे इस तरह देखकर नैना ने कहा, थोड़ा सा रुक जाओ आदित्य, इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल अभी डॉक्टर अंदर है और वो उसे अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और मैं अभी उससे मिलकर आई हूँ, वो बिल्कुल ठीक थी। नैना की बात सुनकर आदित्य ने फिर से पूछा, कुछ बताया क्या डॉक्टर ने? उसके इस सवाल के जवाब में नैना ने हल्के से अपना सिर ना में हिला दिया और दोबारा से उस रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टर कुछ बोलते हुए रूम से बाहर निकल कर आए। उनके साथ एक और डॉक्टर भी थी। वो उसे ही कुछ समझा रहे थे, जिसे वो साथ में चलती हुई जूनियर डॉक्टर पेपर पर नोट भी कर रही थी। नैना भी उनके इंतजार में वहां खड़ी थी, लेकिन वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही आदित्य एक दिन डॉक्टर के सामने आते हुए उनसे पूछता है, डॉक्टर सुनैना, मतलब सुनैना, वो कैसी है? वो ठीक है ना? मैं उसे अभी मिल सकता हूँ ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? उसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम? डॉक्टर ने अपनी बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मिस्टर सिंघानिया, कितने सवाल करते हैं आप। और बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है आपकी वाइफ, और आप उनसे मिल भी सकते हैं, जाइए। आदित्य को कुछ और समझ नहीं आया तो वो तुरंत ही डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते हुए बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर, जब मैं यहाँ पर नहीं था आपने मेरी वाइफ का ख्याल रखा, और सॉरी अगर मैंने आपको सवाल पूछकर परेशान किया हो, बट मैं सच में अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए बहुत परेशान। और आदित्य की बातें सुनकर डॉक्टर के साथ खड़ी जूनियर डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ हाँ टेंशन और परेशानी तो आपके चेहरे पर ही नजर आ रही है मिस्टर सिंघानिया, लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की दोबारा से आश्वासन देने पर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, और उसी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाते हुए वो सुनैना के रूम के अंदर आया। दरवाजा खोलने की आवाज होते ही सुनैना, जो कि बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी, ने तुरंत ही अपनी गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा, और वहां आदित्य को अंदर आते देखकर वो बहुत खुश हो गई और एकदम से बोली, कहाँ चले गए थे तुम आदि, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में छोड़कर? और मुझे ना हॉस्पिटल में नहीं रहना, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई थी ना, देखो अब तो सिर की चोट में भी दर्द नहीं हो रहा, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कुछ बताओगे मुझे? डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया, ऊपर से क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे इतने सारे। आदित्य ने उसके इतने सारे सवाल सुनकर मुस्कुराया, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं बोला और लगभग भागते हुए उसके बेड की तरफ आया और एकदम खड़े खड़े ही उसके गले लग गया। आदित्य उसके इतने सारे सवाल सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल उसकी सुनैना के जैसा ही बिहेव कर रही थी और वो कुछ भी भूली हुई नहीं लग रही थी। उसके इस तरह इमोशनल होकर गले लगा लेने पर सुनैना थोड़ी सी कंफ्यूज तो थी, लेकिन आदित्य का इस तरह गले लगाना उसे बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि इतनी देर से वो उसके बिना यहाँ बहुत अकेला फील कर रही थी, इसलिए उसने भी अपनी बाहों को उसकी पीठ और कमर पर कसते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। आदित्य की आंखों में आंसू थे, जिन्हें वो फिलहाल सुनैना और बाकी सबसे छुपा रहा था, क्योंकि वे खुशी के आंसू थे जो सुनैना को ठीक देखकर उसे आ रहे थे।
सुनैना ने अपना हाथ उसके कंधे पर फेरते हुए कहा, क्या हुआ आदि, तुम रो रहे हो, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें अब रोने परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी नहीं गया था, मैं तो बस यहीं पर था। और तुम मुझे बताओ, तुम्हें सब कुछ याद है ना मेरे बारे में, हमारे बारे में? मेरा मतलब है कि सब कुछ? उसके इस सवाल पर सुनैना काफी कंफ्यूज होते हुए बोली, ऐसे क्यों बोल रहे हो आदित्य, और ये सारे सवाल, आखिर क्या याद नहीं आ रहा मुझे, और क्या कहना चाहते हो, ठीक से बोलो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा दूर होकर उसके बात का जवाब दिया, ठीक से कुछ नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम एकदम ठीक हो जाओ और हम शाम को ही घर वापस चलेंगे, है ना? वैसे भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना। उसकी इस बात पर सुनैना ने जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने आदित्य का हाथ पकड़ा। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, और वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, ठीक तो हम भी देखना चाहते हैं आपको, लेकिन हमारी तो शायद कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई बात नहीं, लगे रहिए। आदित्य ने तुरंत ही सुनैना से दूर होते हुए कहा, अरे अरे आप लोग आइए, आइए अंदर आइए। और स्वीटी तुम? अपनी जान के साथ दरवाजे से अंदर आने वाली स्वीटी बोली, हाँ भाभी, हम सब आपसे मिलने ही आए हैं, आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, अब आप कैसा फील कर रही हैं, बताइए। स्वीटी के इस सवाल पर सुनैना थोड़ा सा इधर उधर देखते हुए बोली, और उसके इस तरह इधर उधर देखने पर उसके साथ खड़े लोगों ने बोला, उनमें से नैना ने कहा, सुनैना कैसी है तू, और हमारे बारे में तो सोचा, कैसे इस तरह अचानक से बेहोश हो गई और फिर तुझे यहाँ लेकर आना पड़ा? सुनैना सब कुछ याद करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मैं भला कैसे बेहोश हो गई, इस बारे में तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन शायद मेरा सिर दर्द हो रहा था उससे पहले। और इतना बोलते हुए सुनैना आगे कुछ और बोलनी ही वाली थी कि तभी उसकी आगे की बात काटते हुए नर्स ने कहा, कोई बात नहीं, सिरदर्द अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि आप एक साथ इतनी भीड़ मत लगाएं, एक एक करके पेशेंट से मिलें।